नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तूब के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। बैठक के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री स्तूब के सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगे। श्री स्तूब भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तूब से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से भारत फिनलैंड संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्तूब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष का विषय है संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य, उन्नति। 3 दिन के सम्मेलन में विश्व के नेता निर्माता और विचारक 6 विषयगत स्तंभों पर विभिन्न प्रारूपों में संवाद करेंगे। रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण में शामिल होने के लिए सेशल्स के विदेश मंत्री और डायस्पोरा बैरी फॉरे आज भारत पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों की साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल भी रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 सीटें तथा हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए मतदान होगा। इस बीच कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। अमरीकी वायुसेना ईरान पर लगातार भारी हवाई हमले कर रही है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि उनके बलों ने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। वहीं इसराइल की वायुसेना ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने तेहरान में ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए व्यापक हमले किए हैं। इससे पहले इसराइल की वायुसेना ने ईरान के इस्फहान और काम में मिसाइल लॉन्चर और रक्षा प्रणाली पर हमला किया था। उधर ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल और अमरीका ईरान के शासन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएगा। ईरान की चेतावनी इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कार्ड्स के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता इसराइल के निशाने पर होंगे। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इस मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। श्रीलंका की नौसेना ने ईरान की नौसेना के पोत आयरिस देना के 84 नाविकों के शव बरामद कर लिए हैं। ये पोत श्रीलंका के दक्षिण के समुद्र में अमरीकी पनडुब्बी के हमले के बाद डूब गया था। ये घटना हिंद महासागर में श्रीलंका की समुद्री सीमा से परे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घटी। विशाखापट्टनम में कई देशों के युद्धपोतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और नौसेना अभ्यास में भाग लेने के बाद ये युद्धपोत ईरान लौट रहा था। नेपाल में संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है। ये चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। देश भर के सभी 77 जिलों में एक ही चरण में मतदान हो रहा है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।